एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथसार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ग्रंथसार में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अनीता देसाई के एक बहुत ही जानी मानी, बहुत ही प्रशंसित रचना क्लियर लाइट ऑफ डे के बारे में।
1980 का उपन्यास है ये, और मतलब इसे अक्सर देसाई की सबसे बेहतरीन किताबों में गिना जाता है।
बिल्कुल, बुकर प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट भी हुई थी। अनीता देसाई, देखिए, भारतीय अंग्रेजी लेखन में एक बहुत बड़ा नाम है। उनकी खासियत है किरदारों के मन की गहराइयों में उतरना, है ना?
हाँ बिल्कुल, खासकर महिलाओं के किरदारों के।
सही कहा। वो दिखाती हैं कि कैसे बड़ी ऐतिहासिक घटनाएं, जैसे जैसे भारत का बंटवारा हुआ, वो एक परिवार की रोजमर्रा की जिंदगी पर, उनके रिश्तों पर कैसे असर डालते हैं।
और क्लियर लाइट ऑफ डे तो इसका एकदम सटीक उदाहरण है।
हाँ, ये कहानी पुरानी दिल्ली के एक पुराने धूल भरे घर में बसे दास परिवार की है।
लेकिन ये सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है, है ना? ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये यादों की कहानी है, रिश्तों की, और वो जो गुजरे हुए वक्त का बोझ होता है ना, उसकी कहानी है।
बिल्कुल। तो आज हम ना इसी कहानी की परतों को खोलने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि किरदार कैसे बदलते हैं, उनके इमोशंस कैसे सामने आते हैं, और ये उपन्यास हमें क्या सिखाता है।
बिल्कुल, और इस कहानी का कह सकते हैं दिल, वो पुराना घर ही है।
हाँ,
वो सिर्फ एक मकान नहीं, वो खुद एक किरदार जैसा है। देसाई ने कमाल का काम किया है ये दिखाने में कि कैसे एक घर सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा नहीं होता, बल्कि एक परिवार की अनकही कहानियों का, रुके हुए वक्त का एक जीता जागता म्यूजियम बन जाता है। उस घर की धूल, उसका सन्नाटा, उसका ठहराव, सब कुछ किरदारों के मन की उलझनों को जैसे आईना दिखाता है।
सही कहा। और इसी घर में हमें मिलते हैं चार भाई बहन, बिम, तारा, राजा और बाबा।
हाँ,
कहानी की शुरुआत होती है छोटी बहन तारा के सालों बाद घर लौटने से।
तारा जो एक डिप्लोमेट से शादी करके विदेश चली गई थी, जैसे वो भागना चाहती थी इस घर से, इसकी यादों से।
हाँ, एक तरह का पलायन था वो, और उसका वापस आना ही कहानी को क्या कहते हैं, एक तरह से शुरू करता है, क्योंकि उसकी वापसी से वो जो दबी हुई यादें थीं, पुरानी कड़वाहटें थीं, वो सब सतह पर आने लगती हैं।
बिल्कुल, तारा की वापसी एक तरह से उस ठहरे हुए तालाब में कंकड़ फेंकने जैसा है, खासकर उसकी बड़ी बहन बिम के लिए।
हाँ, बिम।
बिम वो है जो घर छोड़कर कभी नहीं गई, वो वहीं रहती है, कॉलेज में इतिहास पढ़ाती है, और अपने छोटे भाई बाबा की देखभाल करती है, जो मानसिक रूप से बच्चा ही रह गया है।
बिम तेज है, समझदार है, पर उसके अंदर ना सालों का गुस्सा भरा है, एक तरह का अकेलापन भी।
हाँ, उसे लगता है कि उसे छोड़ दिया गया, राजा चला गया, तारा चली गई, वो अकेली रह गई उस घर में जिम्मेदारियों के साथ।
हाँ, और बिम का किरदार बहुत ही दिलचस्प है। सोचिए, वो इतिहास पढ़ाती है लेकिन अपने ही अतीत में जैसे फंसी हुई है।
बिल्कुल, विडंबना है ये।
उसकी नाराजगी, खासकर अपने बड़े भाई राजा के लिए, वो कहानी के एकदम केंद्र में है।
राजा जो कभी उसका हीरो हुआ करता था, महत्वाकांक्षी था, कवि बनना चाहता था, उर्दू शायरी का शौकीन।
हाँ बिल्कुल, उसे उनके मुस्लिम मकान मालिक हैदर अली बहुत पसंद थे, उन्हीं से वो उर्दू सीखता था।
लेकिन फिर बंटवारा हुआ।
हाँ,
और राजा हैदर अली के पीछे हैदराबाद चला गया, उनकी बेटी से शादी कर ली और एक कामयाब बिजनेसमैन बन गया।
जिसे बिम मानती है कि राजा ने परिवार को धोखा दिया, अपनी जड़ों को भुला दिया।
और ये एहसास तब और भी ज्यादा गहरा हो जाता है जब राजा मकान मालिक बनने के बाद बिम को एक बड़ा ठंडा सा औपचारिक सा खत लिखता है किराया बढ़ाने के बारे में।
सोचिए, जैसे वो अपने ही घर में किराएदार हो।
हाँ, ये खत बिम के लिए बरसों पुराने जख्म पर नमक छिड़कने जैसा था। वो खत उसकी नाराजगी का प्रतीक बन जाता है जिसे वो सालों तक संभाल कर रखती है।
और राजा की कहानी हमें ज्यादातर बिम और तारा की यादों से ही पता चलती है ना, क्योंकि वो कहानी के वर्तमान में तो मौजूद ही नहीं है।
बिल्कुल, वो एक तरह की परछाई है जो अतीत पर छाई हुई है।
तो एक तरफ बिम है जो अतीत से जूझ रही है, उसमें उलझी हुई है।
हाँ,
दूसरी तरफ तारा है जो अतीत से भागना चाहती है, वो नरम दिल है, टकराव से बचती है।
हाँ, उसमें बिम जैसी हिम्मत नहीं है, वो बस शांति बनाए रखना चाहती है, चाहे वो कितनी ही नाजुक क्यों ना हो।
उसकी अपनी अधूरी ख्वाहिशें हैं, अपनी डर हैं। बचपन की वो घटना याद है ना, जब वो क्लब की पार्टी में बेइज्जत होकर कुएं में छिप गई थी।
हाँ, वो घटना उसके मन में बहुत गहरे बैठी हुई है, उसके डर को, उसकी अपर्याप्तता की भावनाओं को जैसे मजबूत करती है।
और फिर है बाबा,
हाँ,
सबसे छोटा भाई।
बाबा वो ऑटिस्टिक है, ज्यादातर चुप रहता है, अपनी ही दुनिया में मगन।
उसे बस अपने पुराने ग्रामोफोन पर वो 1940s के दशक के घिसे पिटे रिकॉर्ड सुनना पसंद है।
बाबा का किरदार पारंपरिक रूप से विकसित नहीं होता, वो स्थिर है, लेकिन उसका महत्व बहुत प्रतीकात्मक है।
हाँ, वो जैसे उस घर के साथ ही वक्त में जम गया है।
बिल्कुल, वो मासूमियत का प्रतीक है, न बदल पाने का और अतीत का लगातार मौजूद रहने का। और वो ग्रैमोफोन जो एक ही धुन बार बार बजाता है, जैसे ये कहता हो कि इस घर में वक्त आगे नहीं बढ़ता। बिम के लिए बाबा बोझ भी है और शायद जीने का एक सहारा भी।
इन किरदारों के जरिए दिसाई एक बहुत बड़ा सवाल उठाती हैं। क्या हम सच में कभी अपने अतीत से पीछा छुड़ा सकते हैं, या हमारी पहचान हमेशा उससे जुड़ी रहती है?
और कहानी सीधी रेखा में नहीं चलती, ये बात भी खास है।
हाँ बिल्कुल, जैसे हम अपनी यादों में कभी आज में होते हैं, कभी बचपन में कूद जाते हैं ना, वैसे ही कहानी भी वक्त में आगे पीछे जाती है।
वर्तमान में तारा और बिम की बातचीत चल रही होती है और अचानक हम उनके बचपन या किशोरावस्था में पहुंच जाते हैं।
खासकर वो 1947 के बंटवारे के तूफानी दिन, वो हिस्सा बहुत अहम है।
हाँ, बहुत अहम। बाहर देश बट रहा था और अंदर दास परिवार भी एक तरह से बिखर रहा था। माँ बाप अपनी दुनिया में मस्त थे, क्लब की पार्टियों में डूबे हुए।
बच्चों पर ध्यान ही नहीं था।
बिल्कुल, बच्चों की देखभाल के लिए उनकी वो शराबी विधवा चाची थीं मीरा मासी, जो खुद धीरे धीरे टूट रही थीं।
कितना दुखद है वो।
हाँ, और उसी माहौल में राजा हैदर अली से उर्दू शायरी सीख रहा था। बिम उसकी राजदार थी और तारा वो बस चुपचाप सब देख रही थी।
फिर बंटवारे का तनाव बढ़ता है, हैदर अली परिवार समेत हैदराबाद चले जाते हैं।
और राजा जैसे टूट जाता है, वो एक बहुत बड़ा मोड़ था उसके जीवन में और परिवार के जीवन में भी।
ये बाहरी उथल पुथल और अंदरूनी बिखराव का जोड़ा जाना, ये दिखाता है कि कैसे इतिहास सिर्फ किताबों की बात नहीं है, वो हमारी जिंदगी का, हमारे रिश्तों का हिस्सा होता है, उन्हें बनाता है, बिगाड़ता है।
सही कहा। और फिर कहानी हमें बचपन की और भी पुरानी यादों में ले जाती है, जहां माँ बाप की अनदेखी और साफ दिखती है।
और हमें समझ आता है कि आज के किरदारों के डर, उनकी असुरक्षाएं, उनकी जड़ें कहाँ हैं।
बिल्कुल, और फिर कहानी वापस आज में आती है, वर्तमान में, जहां तारा की मौजूदगी से बिम का वो बरसों का दबा हुआ गुस्सा वो फूट पड़ता है।
हाँ, वो एक क्लाइमैक्स जैसा है।
वो राजा पर, तारा पर, सब पर बरस पड़ती है। वो तारा को जाने के लिए कह देती है। वो एक तरह का भावनात्मक निचला स्तर है, जहां सब कुछ बिखरता हुआ लगता है।
लेकिन यहीं पर कहानी का सबसे खूबसूरत मोड़ आता है, मुझे लगता है।
हाँ, उस गुस्से के तूफान के बाद जब भी अकेली होती है, शांत होती है, उसे एहसास होता है कि ये गुस्सा कितना खोखला है, कितना नुकसानदेह है खुद उसी के लिए।
और तब वो एक बहुत ही शक्तिशाली काम करती है, वो राजा का वो पुराना चोट पहुंचाने वाला खत ढूंढकर फाड़ देती है।
वो एक प्रतीकात्मक कार्य है, जैसे उसके मन का बोझ हल्का हो गया हो, एक भावनात्मक सफाई कह सकते हैं।
बिल्कुल, कैथारसिस।
और इसके बाद वो तारा से माफी मांगती है। ज्यादा शब्द नहीं कहे जाते, लेकिन दोनों बहनों के बीच एक खामोश समझ पैदा होती है।
उपन्यास का अंत एक उम्मीद के साथ होता है, एक शांति के नोट पर।
हाँ, तारा जाने की तैयारी करती है और बिम एक अजीब सी शांति महसूस करती है। वो अपने जीवन को, अपने परिवार को, उन अटूट लेकिन मुश्किल रिश्तों को स्वीकार कर लेती है।
और वो आखिरी सीन, जब वो बाहर लॉन में बैठकर इकबाल की नज़्म सुनते हैं, जैसे बरसों के दर्द और कड़वाहट के बाद जिंदगी की खूबसूरती फिर से दिखाई देने लगी हो।
बिल्कुल,
दिन के साफ उजाले की तरह, क्लियर लाइट ऑफ डे।
हाँ, ये क्लियर लाइट ऑफ डे सिर्फ शीर्षक नहीं है, ये एक मेटाफर है।
सही,
अतीत के धुंधलके से निकलकर चीजों को साफ साफ देख पाना, कड़वाहट के बिना, गुस्से के बिना।
ये उपन्यास हमें यही दिखाता है कि अतीत से भागा नहीं जा सकता, उसे समझना पड़ता है, स्वीकार करना पड़ता है।
और परिवार, चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, वो हमारी जड़ें हैं।
सच्ची आज़ादी भागने में नहीं, बल्कि उन जड़ों को स्वीकार करने और माफ़ करने में है।
हाँ, माफ़ी। ये इस कहानी का एक बहुत बहुत बड़ा थीम है कि दशकों के दर्द के बाद भी माफ़ी मुमकिन है।
बिम का सफ़र यही दिखाता है।
जबकि राजा और तारा भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन अतीत उन्हें खींच ही लेता है ना?
हाँ, बिम रुकती है, सामना करती है और अंत में शांति पाती है। एक तरह से दिखाता है कि भागने से ज्यादा हिम्मत शायद सामना करने में है।
और समय का थीम भी बहुत दिलचस्प है।
हाँ, देसाई समय को सीधी रेखा की तरह नहीं देखती, वो उसे एक चक्कर की तरह दिखाती है।
बाबा का ग्रामोफोन इसका सबसे बड़ा प्रतीक है।
बिल्कुल,
अतीत कभी मरता नहीं, वो वर्तमान में जिंदा रहता है, उसे आकार देता है। और बिम, जो इतिहास की टीचर है, विडंबना देखिए, उसे भी अपना व्यक्तिगत इतिहास समझने में इतना वक्त लग जाता है।
इसी से जुड़ा है वो ठहराव बनाम बदलाव का थीम, है ना? वो पुराना घर ठहराव का प्रतीक है, जड़ता का।
हाँ, जैसे पुरानी व्यवस्था खत्म हो रही हो
और बाहर की दुनिया बदल रही है। राजा का नया जीवन, बकुल यानी तारा का पति, उसका डिप्लोमैटिक करियर, ये सब बदलाव दिखाते हैं। उपन्यास शायद ये कहता है कि हमें दोनों के बीच एक संतुलन बनाना सीखना होगा। अतीत को साथ लेकर चलना होगा, लेकिन उसमें कैद होकर नहीं रह जाना है।
सही।
स्मृति और आगे बढ़ने के बीच का संतुलन।
और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि देसाई उस समय की महिलाओं की स्थिति पर भी बहुत बारीकी से टिप्पणी करती हैं।
हाँ, बिम और तारा के किरदारों के जरिए।
बिल्कुल, दो अलग रास्ते चुनती हैं वो। बिम पढ़ाई और आज़ादी चुनती है, लेकिन अकेली रह जाती है।
और तारा शादी और सुरक्षा चुनती है, लेकिन अपनी आवाज, अपनी पहचान जैसे खो देती है।
देसाई किसी एक रास्ते को सही या गलत नहीं ठहराती, बल्कि दोनों की मुश्किलें और जो समझौते करने पड़ते हैं वो दिखाती हैं बड़ी सहानुभूति से।
ये कहानी ना किरदारों के मन के अंदर की यात्रा ज्यादा है, बाहरी घटनाओं की कम।
हाँ, मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद कह सकते हैं इसे।
देसाई हमें बिम और तारा के विचारों और भावनाओं की दुनिया में ले जाती हैं। उनकी लिखने की शैली, जिसे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस या चेतना का प्रवाह कहते हैं।
खासकर बिम के विचारों को दिखाते हुए हमें ऐसा महसूस कराती है जैसे हम उनके मन के अंदर ही झांक रहे हैं, और हम देखते हैं कि एक ही अतीत को, एक ही घटना को दो बहनें कितने अलग अलग नजरिए से याद करती हैं, महसूस करती हैं।
और उनकी भाषा वो माहौल को जैसे जिंदा कर देती हैं।
हाँ, वो दिल्ली की गर्मी, वो मक्खियों की भिनभिनाहट, वो धूल और चमेली की मिलीजुली गंध, कबूतरों की आवाज़ें,
ये सब मिलकर एक उदासी का, एक ठहराव का और यादों में खोए रहने का माहौल बनाते हैं, जो पूरे उपन्यास में छाया रहता है।
और वो प्रतीक, घर, कुआं, ग्रामोफोन, ये सब सिर्फ चीजें नहीं रह जाती, ये गहरे अर्थ ले लेती हैं।
बिल्कुल, इस उपन्यास का असर धीमा है पर बहुत गहरा होता है।
हाँ, कहानी खत्म होने के बाद भी पाठक एक उदासी और पुरानी यादों के एहसास के साथ रह जाता है।
हमें समझ आता है कि बचपन की छाया कितनी लंबी होती है, कैसे वो पूरी जिंदगी पर असर डालती है। और बीम के किरदार से खास सहानुभूति महसूस होती है। उसकी अकेली लड़ाई, उसका गुस्सा और अंत में उसे जो शांति मिलती है वो दिल को छू जाती है।
हाँ, ये कहानी भले ही भारतीय पृष्ठभूमि में रची गई हो, दिल्ली में सेट हो, लेकिन इसकी अपील वो यूनिवर्सल है।
बिल्कुल, परिवार के उलझे हुए रिश्ते, प्यार, जलन, गलत फहमियाँ, जुड़ाव की वो गहरी चाहत, ये सब तो हर किसी ने महसूस किए होंगे कहीं ना कहीं।
ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारा अपने परिवार के प्रति क्या फर्ज है और हमारा अपने प्रति क्या फर्ज है।
क्या याद रखना बेहतर है या भूल जाना, ये सवाल भी मन में आता है।
और शायद सबसे बड़ा सबक ये है कि असली ताकत अतीत से भागने में नहीं है, बल्कि उसका सामना करने में है, उसे समझने में है और माफ कर देने में है, उसे दिन के साफ उजाले में देखने का साहस जुटाने में है।
तो कुल मिलाकर क्लियर लाइट ऑफ डे इंसानी रिश्तों और यादों की जटिल दुनिया में एक बहुत गहरा गोता है। यानीता देसाई की मनोवैज्ञानिक समझ और उनकी काव्यात्मक भाषा का एक बेहतरीन नमूना है।
यह हमें सिखाता है कि परिवार के बंधन चाहे कितने भी पेचीदा क्यों ना हो, वे अटूट होते हैं और अंततः स्वीकृति और क्षमा से ही शांति मिलती है।
यह संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।